लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार के आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार के आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo la catechesi sulla preghiera, meditando sul mistero della creazione.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम प्रार्थना पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखते हुए सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करते हैं। हमारा जीवन जो हमारे लिए सत्य है, मानव के रूप में हम अपने हृदय को प्रार्थना हेतु खोलते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम अध्याय में हम कृतज्ञता के गीत को पाते हैं। इस गीत में कई कड़ियाँ हैं जो हमें ईश्वर द्वारा बनाई गई सुंदर चीजों का सदैव बखान करने हेतु प्रेरित करती हैं। ईश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा सृष्टि में सारी चीजों की रचना की। अपने शब्दों के द्वारा उन्होंने प्रकाश और अंधकार को अलग किया, दिन और रात बनाए, ऋतुओं को बनाया और पृथ्वी पर विभिन्न सुंदर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सजाया। इस वनस्पति जगत को, जो जीवन की सारी भागदौड़ से परे जाती है, मानव की संरचना सबसे अंत में की गई। मानव की यह उत्पत्ति ईश्वर को अपने में अनंत संतोष और खुशी से भर देती है। हम ईश्वर की सुंदर कृति को सृष्टि में देख सकते हैं। संत पापा ने कहा कि सृष्टि की सुंदर रचना और इसका रहस्य मानव के हृदय को सर्वप्रथम प्रार्थना के मनोभावों से भरता है। इसे हम स्तोत्र 8 में पाते हैं, जिसका पठन हमने शुरू में किया। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। इस स्तोत्र के द्वारा प्रार्थना करते हुए हम सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करते हैं। आकाश के तारेगण और यह खगोलीय भौतिकी हमें आज अपनी विशालता में इस प्रेम में आश्चर्य से भर देती है कि इस सुंदर शक्तिशाली सृष्टि के पीछे किसका हाथ है और इस अथाह विशालता के सामने मनुष्य क्या है। स्तोत्र 89 का पद 48 कहता है, मनुष्य इसके सामने कुछ भी नहीं है, वह एक प्राणी है जो जन्मता और मर जाता है, वह एक अति क्षण भंगुर कृति है। इसके बावजूद पूरे ब्रह्मांड में मानव ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो संसार की सुंदरता पर चिंतन कर सकता है। मानव इस दुनिया में आज है, कल मर कर खत्म हो जाता है। हम अपने जीवन की इस सुंदरता से वाकिफ हैं। संत पापा ने कहा,
La preghiera dell'uomo è strettamente legata con il sentimento dello stupore.
मानव की प्रार्थना उसकी गहरी आश्चर्यजनक अनुभूतियों से जुड़ी है। यदि हम मानव के महानता की तुलना करें तो यह विश्व के आकार से भी बड़ी है। मानव की विशाल उपलब्धियां अपने में छोटी लगती हैं, लेकिन मानव अपने में छोटा नहीं है। प्रार्थना में हम करुणा के मनोभावों को संयुक्त पाते हैं। संसार में कोई भी चीज संयोग से उत्पन्न नहीं हुई है। विश्व का रहस्य देखने वालों के परोपकारी निगाहों में है, जिसे कोई हमारी आंखों में देख सकता है। स्तोत्र 8 का पद 6 हमें कहता है कि तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। ईश्वर के साथ मानव का संबंध एक महानता है जो उसे सिंहासन प्रदान करता है। हम अपनी प्रकृति में कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अपनी मानवीय बुलाहट में ईश्वर की संतान स्वरूप हम उस महान राजा की प्रजा हैं। हम में से बहुतों ने इस बात का एहसास किया है। हमारे जीवन की कहानी हमारी कृतज्ञता पूर्ण प्रार्थना में प्रकाशित होती है, जहां हम अपने जीवन की कटुता और कठिनाइयों के बावजूद आकाश के भरे तारों, सूर्यास्त और फूलों पर चिंतन करते हुए अपने जीवन की सुंदरता का एहसास करते हैं। संत पापा ने कहा कि शायद हमारे जीवन का यही एहसास धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम पन्नों में निहित है। धर्म ग्रंथ में जब सृष्टि की रचना का स्वरूप लिखा जा रहा था, इसराइल अपने सुखद दिनों से नहीं गुजर रही थी। एक शक्तिशाली शत्रु ने पृथ्वी में उसे अपने कब्जे में कर लिया था। बहुतों को इस परिस्थिति में प्रवासन का शिकार होना पड़ा। कितनों को मेसोपोटामिया में गुलाम होना पड़ा था। उस समय उनका कोई निवास नहीं रह गया था। कोई गिरजाघर, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। इन सारी चीजों के बावजूद सृष्टि की महान कहानी के शुरुआती दिनों से ही किसी ने कृतज्ञता के कारणों की खोज की, जहां हम ईश्वर को सारी चीजों के लिए धन्य कहते और उसकी महिमा गाते हैं। संत पापा ने कहा,
La preghiera è la prima forza della speranza.
प्रार्थना हमारे लिए आशा की पहली शक्ति है। हम प्रार्थना करते हैं और हमारी आशा विकसित होती बढ़ती जाती है। उन्होंने कहा, प्रार्थना आशा का द्वार खोलती है। आशा उपस्थित है, जिसका द्वार हम अपनी प्रार्थना के माध्यम खोलते हैं। प्रार्थना में व्यक्तियों के द्वारा सच्चाई की रक्षा होती है। वे सर्वप्रथम अपने लिए और साथ ही दूसरों के लिए इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि जीवन की कठिनाइयों, तकलीफों के बावजूद हम कृपाओं की प्रचुरता में अपने को आश्चर्यमय ढंग से आनंदित होता पाते हैं। हमें इसे बचाने और सुरक्षित रखने की जरूरत है। संत पापा ने कहा,
Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento.
नर और नारी जो प्रार्थना करते हैं अपने में इस बात को जानते हैं कि आशा निराशा से शक्तिशाली होती है। वे विश्वास करते हैं कि प्रेम मृत्यु से ताकतवर है और एक दिन निश्चित रूप में उसकी विजयी होगी, यद्यपि हम उसकी राहों और समय से अनभिज्ञ ही क्यों ना हों। प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाले नर और नारी अपने चेहरे में प्रकाश को धारण करते हैं, क्योंकि अंधेरे दिन में भी सूर्य चमकना बंद नहीं करता है। संत पापा ने कहा कि प्रार्थना हमें प्रकाशित करती है, या हमारे हृदयों को, हमारी आत्मा और हमारे चेहरे को प्रकाशित करती है, यहाँ तक कि हमारे अंधकार में समय और हमारे सबसे तीक्ष्ण दुख को भी। संत पापा ने कहा,
Tutti siamo portatori di gioia. Avete pensato questo?
हम सभी खुशी के वाहक हैं। कभी आपने इस बारे में चिंतन किया है, या क्या आप दुखद समाचार के वाहक हैं? वे चीजें जो हमारे लिए दुख लाती हैं, हम सभी में खुशी लाने की क्षमता है। हमारा यह जीवन ईश्वर का उपहार है और यह छोटा है, जिसे हम कटुता और दुख से नहीं भर सकते हैं। हम अपने खुशमय जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं। हम दुनिया को देखते, इसकी सुंदरता को निहारते और क्रूस को भी देखते और कहते हैं, लेकिन आप जीवित हैं, आपने हमारे लिए यह किया है। यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय की गहराई में अशांति का अनुभव करें, जो हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता में उनकी महिमा गान हेतु मददगार होते हैं। हम सृष्टिकर्ता उस महान राजा की संतान हैं, जो हमें अपनी सृष्टि के रहस्यों की थाह लेने में मदद करते हैं, जिसकी सुरक्षा हम नहीं करते, लेकिन वे उसे प्रेम से हमारे लिए बनाते और हमें देते हैं। संत पापा ने कहा, ईश्वर हमें इस बात को गहराई से समझने हेतु मदद करें और हम में कृतज्ञता के भाव जगाएं, क्योंकि कृतज्ञता एक सुंदर प्रार्थना है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
आओ चले हम प्रभु के मंदिर गाते हुए भजन। आओ चले हम प्रभु के मंदिर गाते हुए भजन। वही हमारा उसने दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया।
जीवन की रोटी वही, आत्मिक प्यास बुझाता वही।
उसने दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारीय आमदर्शन समारोह में अपनी धर्म शिक्षा समाप्त करने के बाद अंग्रेजी भाषी श्रोताओं का अभिवादन कर कहा, जैसा कि हम प्रभु के स्वर्गारोहण का महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको और आपके परिवारों को जी उठे प्रभु येसु मसीह की शांति और आनंद का आह्वान करता हूँ। संत पापा ने ख्रिस्तियों को पुनर्जीवित मसीह के उदार गवाह बनने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जी उठे मसीह हमारे साथ हैं और हमें बल प्रदान करते हैं। येसु ने हमें सभी राष्ट्रों में जाने और उन्हें वही सब सिखाने की आज्ञा दी जिसे उन्होंने अपने चेलों को सिखाया था। स्पैनिश भाषी श्रोताओं को संबोधित करते हुए संत पापा ने प्रार्थना की कि पुनर्जीवित प्रभु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हमें आनंद का वाहक बनाए और हमारे भीतर आशा और दृढ़ता को मजबूत करे। निश्चय ही प्रेम मृत्यु से अधिक मजबूत होता है और हमेशा जीत उसी की होती है। संत पापा फ्रांसिस ने पोलिश भाषी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के जन्म की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा, पोलिश संत महान आस्था के पुरोहित थे जो अपनी प्रार्थना में ईश्वर को कलीसिया और मानवता को सौंपना पसंद करते थे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का आदर्श वाक्य था, तोतुस तुउस, अर्थात सब कुछ आपको समर्पित। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की तरह हम भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर सकें। हम कठिनाई के समय माता मरियम की ओर मुड़े और उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। संत पापा फ्रांसिस ने जर्मन भाषी श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि कलीसिया 16 से 18 मई तक लौदातो सी सप्ताह मना रही है, हम सृष्टि की अद्भुत रचना में ईश्वर की महानता को पहचाने, प्रकृति में खुशी और ईश्वर की प्रशंसा हमें पूर्णता और आंतरिक प्रशंसा पाने में मदद करे। और संत पापा फ्रांसिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अंकोरेज महाधर्म प्रांत और जूनो धर्म प्रांत को मिलाकर अंकोरेज जूनो एक नया महाधर्म प्रांत बनाया और अंकोरेज के प्रेरितिक प्रशासक धर्माध्यक्ष एंड्रू को मर्ज किए गए नए महाधर्म प्रांत का पहला महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। उधर संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक उद्बोधन लौदातो सी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक सप्ताह यानी 17 से 24 मई तक सामान्य घर की देखभाल के तहत इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत की स्थायी कलीसिया भाग ले रही है। इंडोनेशिया में जकार्ता के कार्डिनल इग्नासियस ने लौदातो सी पहल के तहत अपने सभी विश्वासियों को नेक दिल इंसान बनने का आह्वान किया। कार्डिनल ने उन चीजों को बर्बाद नहीं करने की सलाह दी जो दूसरों के काम आ सकती है। नेक दिल के साथ हम अपनी धरती को एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जगह बना सकते हैं। हमारे आम घर की रक्षा करने हेतु हमें पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने रविवार ये मिस्सा धर्म विधि में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कहा, धर्म प्रांत के विश्वासियों के साथ संत पापा फ्रांसिस की चिंता को साझा किया और इसे सभी जीवों एवं मनुष्यों के लिए एक समृद्ध एवं शांतिपूर्ण जगह बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे भोजन को बर्बाद ना करें, हम उतना ही भोजन खरीदें जिसे हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं, उन्हें इस भोजन की जरूरत है। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए कपड़ों को यूं ही ना फेंक दें, क्योंकि वे अपशिष्ट समस्या पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में फैसलाबाद के धर्माध्यक्ष इद्रियास रहमत ने रविवार को पवित्र मिसा के दौरान सृष्टि के अमूल्य वस्तुओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी विश्वासियों को सृष्टि की देखभाल, संसाधनों के उचित उपयोग, लोगों और सभी जीव जंतुओं की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। पवित्र मिसा के बाद एक संगोष्ठी में लौदातो सी की मुख्य विशेषताएं, पृथ्वी और पर्यावरण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। संगोष्ठी में वृक्षारोपण भी शामिल था, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाधर्माध्यक्ष रहमत ने लोगों से स्थायी पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। भारत के मुंबई शहर में मुंबई महाधर्म प्रांत के पर्यावरण हेतु बने कार्यालय ने एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की है जो पूरे वर्ष के लिए एक टिकाऊ जीवन शैली के लिए व्यवहार और जागरूकता की पहल का सुझाव देती है। पर्यावरण कार्यालय के नेतृत्व करने वाले फादर जोसेफ ने कहा कि कैथोलिक समुदाय टिकाऊ जीवन शैली को अपनाने के लिए तथा न्याय और स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए विचार मंथन और प्रार्थना करना चाहती है। मुक्तिदाता को समर्पित धर्म समाज के फादर इवेल ने लौदातो सी पर वीडियो की एक श्रृंखला बनाई है। वीडियो में सृजन के संरक्षण के अलग अलग पहलू पर दैनिक चिंतन के अलावा कुछ गतिविधियों का सुझाव दिया गया है, जिसे लौदातो सी सप्ताह के दौरान हर दिन अभ्यास किया जा सकता है। भारत के येसु समाजियों ने संसाधनों और कार्यों की एक पूरी श्रृंखला की सिफारिश करते हुए स्कूलों के लिए विश्व पत्र के महत्व पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। तरु मित्रा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1998 में पटना प्रांत के येसु समाजियों द्वारा की गई और अब यह दक्षिण एशिया के जेसुइट सम्मेलन की एक परियोजना है। भारत में सैकड़ों हाई स्कूल और कॉलेज को एक साथ लाने वाले तरु मित्रा नेटवर्क को एक पारिस्थितिकी संवेदनशीलता फैलाने और पृथ्वी के दोस्त की आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है और आम घर के अनावश्यक शोषण एवं दोहन तथा इसकी रक्षा के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। उधर यूएस ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के आंकड़ों के अनुसार एक सुपर चक्रवात अम्फान बांग्लादेश और भारत के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है और इसका आगमन आज निर्धारित है। यह 220-230 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।